Gopi Jana Vallabha Giri Vardhari. श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में इस के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। कितना दिव्य वातावरण निर्माण हो जाता है जब श्रद्धालु भक्त इकट्ठे हो जाते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। यही हमारे जीवन का ध्येय है और यही सच्चा पारिवारिक जीवन है। अभी हम जब यहाँ बैठे हैं, हम एक परिवार बन गए हैं, भगवान कृष्ण का परिवार, निज जन, भगवान के निज जन, हरि जन। आजकल इसका तात्पर्य अलग हो गया है, परंतु वास्तव में हरि के जन। वैसे जब महात्मा गांधी ने ऐसे नाम दिया था उनको हरि जन, तो इस दृष्टि से दिया था कि समाज में उनका सम्मान हो, ताकि समाज में उनको लोग नीच दृष्टि से नहीं देखें। हरि जन मतलब बहुत ऊंचा एक स्थान है, ताकि जो समाज में जिनके प्रति बहुत शोषण हुआ था, जिनके प्रति अत्याचार और अन्याय हुए थे और जिनके प्रति अच्छी दृष्टि से लोग नहीं देखते थे, तो उनको वो उठाना चाहते थे समाज की दृष्टि में, उनको एक अच्छा नाम देना चाहते थे, तो हरि जन उन्होंने नाम दे दिया। लेकिन आजकल लोग भूल गए हैं कि हरि जन क्या होता है। हरि के जन भगवान कृष्ण के लोग हैं, भगवान कृष्ण के भक्त, बहुत ऊंची चीज है ये। तो वास्तव में कौन हरि जन होते हैं? जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो ये हरि जन जो है वो एक परिवार हो गए हैं। तो हम अब यहां मंदिर में आए हैं, चाहे हम ब्रह्मचारी हों, सन्यासी हों, गृहस्थी हों, जो भी हों, चाहे हमारे परिवार में भी क्यों ना हो, परिवार में कौन कौन क्यों ना हो, परंतु अब जब हम यहां आए हैं तो हम हरि जन बन गए हैं। हम कृष्ण के भक्त बन के कृष्ण का एक परिवार बन गए हैं और इसमें कोई भेद नहीं है, कौन ऊंच जाति का है, नीच जाति का है, कौन इस भाषा बोलने वाला है, उस भाषा बोलने वाला है, कौन अमीर है, गरीब है, शिक्षित है, अशिक्षित है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हरि जन समाज में, सच्चे हरि जन समाज में सब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में एक है। सच्चा पारिवारिक जीवन ये है, ये सबसे बड़ा परिवार है। भगवान के धाम में भी ऐसा परिवार है भगवान का। सच्चा पारिवारिक जीवन तो भगवान के धाम में पाया जाता है। नीचे बच्चों की तो सच्चा पारिवारिक जीवन तो भगवान के धाम में पाया जाता है। और जो भी हम पारिवारिक जीवन यहां देखते हैं भौतिक जगत में, वो आध्यात्मिक जगत के पारिवारिक जीवन का एक प्रतिबिंब मात्र है, विकृत रूप है उसका। वहां भगवान के धाम में भी परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, सब होते हैं वहां। परंतु प्रत्येक संबंध भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र नहीं होता। परिवार में, हर एक परिवार में केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण होते हैं। सबसे अधिक प्रेम परिवार के सदस्य भगवान श्री कृष्ण से करते हैं, एक दूसरे से नहीं। एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं ही, परंतु उनका प्रेम इतना तीव्र इसलिए हो जाता है कि सभी के सभी श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं। तो उसी तरह से यदि हम भी तीव्रता से श्री कृष्ण से प्रेम करने लगे, तो आपस में हम सबके बीच में भी सच्चा प्रेम जागृत होगा। यदि हम श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं, तो आपस में हमारे बीच में सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। जिस हद तक हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई है, उस हद तक हमारे बीच में प्रेम रहेगा तो बाहर के जगत में भी ऐसे यही सूत्र लागू होता है। यदि बाहर की दुनिया में भी सभी लोग भक्त बन जाएं, कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाएं, तो जिस तरह से आज हम इतने लोग इकट्ठे हुए हैं मंदिर में, वो सब एक परिवार बन गए हैं, उसी तरह से सारे दुनिया जो है ये भी एक परिवार बन जाएगा। जो वसुधैव कुटुंबकम की बात वैदिक सभ्यता में बताई जाती है कि सारी दुनिया एक कुटुंब है, वो केवल तब संभव हो सकता है जब हम श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाएंगे। कृष्ण श्री कृष्ण की सेवा मिलजुल कर बिना स्वार्थ और अहंकार के करते रहेंगे। हम सब अपने अपने जीवन में, चाहे हमारा आश्रम या वर्ण कुछ भी क्यों ना हो, हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो जाएंगे। तब ऐसा ही एक वातावरण निर्माण हो जाएगा जो कि भगवान के धाम में है। फिर इस जगत में और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं रहेगा। परंतु ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पे भगवान के शरण में नहीं आना चाहते हैं, वो भगवान से स्वतंत्र होकर भोग ही करना चाहते हैं, इसलिए इतने सारे उत्पात और उपद्रव यहाँ पे हैं सब जगह, इतना खून खराबा, इतने झगड़े, मतभेद, गलत फहमियां, खून, युद्ध आदि होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पारिवारिक जीवन भगवान के धाम में है और यहां भी है, और सब कुछ भगवान से आता है। तो यहां हमारा परिवार है तो भगवान का परिवार क्यों नहीं होना चाहिए? वहां पर हमारे भी माता पिता हैं तो भगवान के क्यों नहीं होने चाहिए माता पिता? वैसे देखा जाए तो उनका माता पिता कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वही सभी के माता पिता है। फिर भी रस का आस्वादन करने के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए वो अपने किसी शुद्ध भक्तों को माता पिता बना देते हैं और उनसे ऐसे स्नेह का संबंध बना लेते हैं। ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के बहन भी हैं सुभद्रा देवी हैं, उनके भाई भी हैं बलराम जी हैं, तो हमारे भाई बहन हो सकते हैं तो भगवान के भाई बहन क्यों नहीं हो सकते? हमारे बच्चे हो सकते हैं तो भगवान के बच्चे क्यों नहीं हो सकते? हमारे मित्र हो सकते हैं, सेवक हो सकते हैं तो भगवान के लिए क्यों नहीं हो सकते? तो भगवान के धाम में ये सब है। यदि हम वहां जाके इस मूल वास्तविक पारिवारिक जीवन में शामिल होना चाहते हैं तो हमें यहां पहले हरिजन बनना पड़ेगा वास्तव में, और एकजुट होकर भगवान कृष्ण की सेवा करनी होगी। तो वहां भगवान श्री कृष्ण के पारिवारिक जीवन में बलराम जी श्री कृष्ण के भाई हैं, उनके बड़े भाई, और वैसे श्री कृष्ण के दोस्त भी कई हैं वहां। भगवान श्री कृष्ण का जीवन बड़ा रोमांचक है, बड़ा आनंद से भरा हुआ है। इतना ही है कि जिस तरह से यहाँ पे झगड़े होते हैं और द्वेष होता है, वैसे नहीं है भगवान के धाम पे, वहां केवल प्रेम ही प्रेम है। तो ऐसा जीवन हम सब चाहते हैं। केवल एक चीज की कमी है जो यहाँ दिखने में आती है, हमारे संबंधों में, हमारे माता पिता, भाई बहन, है ना, पत्नी और बच्चे आदि सब है वहां पे, मित्र भी है, कौन नहीं है? नहीं, कौन? कृष्ण तो है ना वहां, लेकिन वहां कौन नहीं है? हम नहीं है, आप ठीक है, और बहुत से शत्रु नहीं है यहाँ भौतिक जगत में। हमारे मित्र है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मामा चाचा, ये वो, बुआ भाभी, बहुत सी चीजें हैं। शत्रु भी है ना हमारे यहाँ ये दुनिया में तो भरपूर, हर एक व्यक्ति सोचता है ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ऐसा भेदभाव करके ही आदमी चलता है। इसलिए प्रहलाद ने कहा ये तो माया है। जब शंड और अमर उनके जो गुरु थे, गुरुजन थे, उनके अध्यापक थे, जब प्रहलाद ने भगवान विष्णु का गुणगान करना शुरू किया हिरण्यकश्यप ने, तो हिरण्यकश्यप हैरान हो गए और डांटने लगे ब्राह्मणों को, शंड और अमर को, कि क्या पढ़ा रहे हो मेरे बच्चे को, मैं तो असुर हूं, इसको भी बड़ा असुर बनना बनाना चाहता हूं, और असुर बनाने की बजाय तुम इसको भक्त बना रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम नहीं बता रहे हैं, हमने ऐसा नहीं कहा, न जाने कैसे ये सीख गए बच्चा। फिर बाद में जाके प्रहलाद से कहने लगे, अरे बच्चे बताओ प्रहलाद, ये सब बुरी बुरी बातें कि भगवान का भक्त बनो, ये सब ये किसने सिखाया तुम्हें से? ये हमारे शत्रु आए हैं कि यहाँ पे वेश बदल के तुम्हें ये सब सिखाने के लिए? तो प्रहलाद का क्या उत्तर था? प्रहलाद का उत्तर था कि मैं सर्वप्रथम उस परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करता हूं जिनके माया शक्ति के द्वारा ही यहां दुनिया में लोग सोचते हैं कि कोई मेरा मित्र है और कोई मेरा शत्रु है। तो ये जो मित्र और शत्रु के जो द्वंद्व हैं, ये केवल भौतिक जगत में पाए जाते हैं। तो वहां भगवान के धाम में कोई शत्रु नहीं है, केवल शत्रु यहां पाए जाते हैं सब। तो फिर क्या ऐसा नहीं है कि भगवान की लीला, भगवान का पारिवारिक और सामाजिक जीवन में कुछ अपूर्णता है, कुछ कमी है? भगवान तो पूर्ण है ना, तो किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए भगवान के जीवन में, उनके समाज में। और वहां तो कोई शत्रु है नहीं, कोई द्वेष नहीं करता भगवान से, तो फिर क्या कोई कमी है? है भी और नहीं भी है। इसलिए कि वैकुंठ जगत में कोई शत्रु नहीं है, परंतु भौतिक जगत में ढेर सारे शत्रु पड़े हैं भगवान ने। और ये भौतिक जगत भी भगवान का धाम ही तो है ना, ये तो भगवान के धाम के ही अंतर्गत आता है। जिस प्रकार से जो कैद खाना है, जेल है, वो भी तो राज्य में ही आता है, लेकिन कैद खाने में कौन रहते हैं? जो लोग भगवान, जो जो राज्य के या प्रजा के शत्रु हैं, जिन्होंने बहुत बड़े गुनाह किए हैं, ऐसे लोग रहते हैं वहां पर, लेकिन वो भी राज्य के अंदर ही आता है। तो ठीक उसी प्रकार से भौतिक जगत वो जगत है जो भगवान के धाम के अंदर होते हुए भी एक ऐसा विशेष स्थान है जहां पे गिने चुने भगवान के भक्त रहते हैं, परंतु अधिकतर भगवान के शत्रु रहते हैं। शत्रु वो भी होते हैं जो भगवान की सेवा नहीं करते। भले कोई व्यक्ति कहे मैं तो द्वेष नहीं करता भगवान से, परंतु उत्तर ये है कि यदि हम भगवान से प्रेम नहीं करते तो भगवान के शत्रु के बराबर ही हैं हम। तो ये भौतिक जगत उन लोगों के लिए बनाया है जो भगवान से प्रेम नहीं करना चाहते, और जो स्वतंत्र होकर भोग करना चाहते हैं तो वो शत्रु बन ही गए ना। फिर इसलिए भगवान यहां भी आते हैं लीला करने के लिए, और यहां पे अपने शत्रुओं के साथ भी संबंध बना लेते हैं, उनसे युद्ध करते हैं। और ऐसे लीलाओं में भगवान अकेले नहीं आते, वो अपने सारे परिवार को ले आते हैं, अपने सारे समाज को ले आते हैं, हरिजनों को ले आते हैं वहां से, जो असली हरिजन हैं उनको ले आते हैं वहां से, और फिर उनके साथ लीला करते हैं। और यहां कभी कभी शत्रुओं के साथ युद्ध करना पड़ता है तो अपने सहायकों को, मित्रों को, भाई बहनों को साथ में लेकर जाते हैं। तो बलराम जी उनके भाई होने के कारण वो उनकी लीला में सहायता तो करते ही हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए
बलराम जी तो थे ही वहां पर, और बचपन से लेकर जन्म से लेकर अंत तक जबकि भगवान श्री कृष्ण का तिरोभाव नहीं हुआ तब तक बलराम जी श्री कृष्ण की लीला में साथ में ही रहे। जब असुरों के वध करने का समय आया तो बलराम जी भी कृष्ण के साथ साथ थे। वृंदावन में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में, कई ऐसे असुर थे जिनका वध स्वयं श्री कृष्ण ने किया अपने कर कमलों से, और कई ऐसे असुरों को उन्होंने बलराम जी के लिए छोड़ दिया कि आप इनका वध करो। धेनुकासुर, प्रलंबासुर, द्विविद आदि, और कई ऐसे असुर थे जिनको कि उन्होंने अपने भक्तों के लिए छोड़ दिया, जैसे अर्जुन, भीम, उन्होंने बहुत सारे असुरों का वध कर दिया। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने शत्रुओं से निपटा लेते हैं, परंतु हम जैसे अपने शत्रुओं से निपटाते हैं वैसे नहीं। हम जब हमारे शत्रुओं के प्रति व्यवहार करते हैं तो मन में द्वेष रहता है, और उनके पराजय में, उनके दुख में हम सुख लेते हैं, ये भौतिक वृत्ति है। परंतु भगवान श्री कृष्ण अपने आप को किसी का शत्रु नहीं मानते हैं, परंतु दूसरे लोग अपने आप को भगवान का शत्रु मानते हैं, वैर का संबंध स्थापित करना चाहते हैं भगवान से। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम ऐसे ही मेरे से संबंध स्थापित करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा शत्रु बन जाऊंगा। तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो ना, तो ठीक है चलो युद्ध करते हैं। तो जब भगवान या उनके भाई बलराम जी, वो भी भगवान हैं, या उनके भक्त जब किसी असुर का वध करते हैं तो असुर का उद्धार होता है, असुर की भलाई होती है, भौतिक जगत से उनका उद्धार हो जाता है। और भगवान जब वध करते हैं तो द्वेष से नहीं करते, वो प्रेम से करते हैं। तो खैर बलराम जी भी श्री कृष्ण के साथ में रहे, उन्होंने भी ऐसे कई असुरों का वध किया वृंदावन में, और जब वो मथुरा आए तो वहां पर भी सर्वप्रथम असुरों के वध से ही सारे कार्य शुरू हो गए। कृष्ण भगवान ने स्वयं कईयों को निपटाया, बलराम जी भी थे, उन्होंने भी कईयों को निपटा लिया, और फिर आगे चल के द्वारका में तो ऐसे कई लीलाएं हुई ही। तो ऐसे बलराम जी हमेशा श्री कृष्ण के साथ में रहते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं भगवान से, क्योंकि बलराम जी स्वयं भगवान है, कृष्ण स्वयं भगवान है, बलराम जी उनके प्रथम विस्तार हैं। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कृष्ण और बलराम दोनों भगवान हैं। अब ये एक भ्रम में डालने वाली बात है उन लोगों को जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में भगवान के बारे में ज्ञान स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे अक्सर आरोप लगाया जाता है कि आप लोगों के धर्म में इतने सारे भगवान हैं, अन्य जो धर्म है इनमें एक एक भगवान होता है तो कितना आसान हो जाता है, सबको कहें बस इनका, इनकी पूजा करो। लेकिन आप लोगों के धर्म में तो न जाने कितने भगवान हैं, और यदि आप हम उनको समझाएं, नहीं नहीं कई ऐसे होते हैं जो वास्तव में भगवान नहीं होते हैं, ये देवी देवता होते हैं। तो वो उनमें से जो और अधिक जानकार होते हैं वो फिर आगे कहते हैं ठीक है देवी देवता की बात तो अलग रही, लेकिन आपके कितने सारे भगवान भी तो है ना, जैसे मत्स्य है, कूर्म, वराह, रामचंद्र, नारायण, विष्णु, कृष्ण, बलराम, कितने सारे हैं, बहुत सारे भगवान आपके हैं। तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर ये है कि नहीं, ये अलग अलग भगवान नहीं है, इन सब का स्वरूप एक ही है, ये सब एक ही भगवान है, एक ही व्यक्ति हैं, श्री कृष्ण। परंतु इनके शरीर, इनके दिव्य देह अलग अलग हैं। भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं, इन अलग अलग रूपों में, और वही भगवान रहते हैं, वो अलग नहीं होते। तो श्री राम और श्री कृष्ण में अंतर नहीं है, मत्स्य देव और श्री कृष्ण में अंतर नहीं है, कूर्म अवतार और कृष्ण भगवान में अंतर नहीं है, ये सब कृष्ण ही है। परंतु कृष्ण भगवान ने अपने आप को विस्तार कर लिया है कुछ विशेष उद्देश्य हेतु, कुछ अलग अलग प्रकार के रसों का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने आप का विस्तार ऐसे करते हैं। तो बलराम जी उनके सबसे पहले विस्तार है। और बलराम जी के रूप में भगवान क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि आगे चल के बलराम जी से अन्य विस्तार होते हैं। कृष्ण केवल बलराम जी के रूप में अपने आप को विस्तार करते हैं, आगे आने वाले जितने भी भगवान के रूप हैं वो सब बलराम जी से आते हैं। और बलराम जी का प्रकट होने का मुख्य कारण ये है कि वो भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई भगवान कैसे, वो भी भगवान है ना, वो कैसे सेवा करेंगे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बलराम जी सेवक भगवान हैं और कृष्ण सेव्य भगवान हैं। सेव्य भगवान अर्थात वो भगवान जिनकी सेवा की जाती है, और सेवक भगवान वो हैं जो सेव्य भगवान की सेवा करते हैं। परंतु हमारे लिए दोनों ही सेव्य हैं, दोनों की सेवा हमें तो करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वो दोनों एक ही भगवान है। तो ये है बलराम जी का तत्व, स्वयं वो श्री कृष्ण ही है। तो सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं भगवान के साथ में करते हैं, कृष्ण के साथ में, और उनका प्राकट्य भी इसी तरह से हुआ। श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही बहुत निकट का संबंध है। जब माता देवकी के गर्भ में एक के बाद एक 6 बच्चे हुए, फिर उनका जन्म भी हुआ, तो देवकी के क्रूर भाई कंस ने आके इन 6 बच्चों की हत्या कर दी। बहुत बड़ी हिंसा, बहुत क्रूर तरीके से की, और माता देवकी की क्या दशा हुई होगी हम कल्पना ही कर सकते हैं। बाद में 7वें बार बलराम जी माता देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, और जब कई महीने बीत गए थे बलराम जी के माता देवकी के गर्भ में, तो उस समय गोलोक वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत में, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया शक्ति को बुलाया। भगवान के धाम में योग माया शक्ति है, और यहां भौतिक जगत में महामाया शक्ति है। जो हम बोलते हैं कि ये सब माया जाल है, ये है महामाया। माया जाल में पड़ के सभी लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। ये एक जाल है। जाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेट। नेट शब्द सुना है ना? और आजकल आप में से जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो भी नेट बुक कहा जाता है, वो भी पकड़ने के लिए सबको, वो भी एक तरह का जाल ही है। तो खैर, ये माया जाल के कारण फिर सभी भ्रमित हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। परंतु भगवान के धाम में जो योग माया है वो इस तरह से काम नहीं करती है, बल्कि उनके प्रभाव से जितने भी लोग आध्यात्मिक जगत में रहते हैं उनका भगवान के प्रति प्रेम और भी बढ़ जाता है, और तीव्र हो जाता है, और मधुर बन जाता है। तो योग माया और महामाया में संबंध क्या है? कि महामाया योग माया की छाया है, उनके प्रतिबिंब है। तो काम सेवाएं दोनों की अलग अलग होती हैं, हालांकि दोनों ही भगवान कृष्ण की ही सेवा कर रही हैं। तो उधर भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को बुलाया, तो योग माया ने आके प्रणाम किया। फिर भगवान ने कहा, कि तुम्हारे लिए हे योग माया देवी एक सेवा है बहुत महत्वपूर्ण। मेरे जो अंश बलराम जी हैं वो इस समय भौम वृंदावन में पृथ्वी लोक पे जो वृंदावन का प्राकट्य मैंने किया हुआ है वहां पे कंस के कारागृह में देवकी माता के गर्भ में मेरे अंश हैं, तो उनका स्थानांतरण करो, उनको देवकी माता के गर्भ से निकालकर गोकुल में जो वसुदेव की दूसरी पत्नी है रोहिणी देवी उनके गर्भ में स्थापित करो। और क्योंकि तुम उस बच्चे को इस तरह से देवकी माता के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित करोगे उस बच्चे का नाम होगा संकर्षण। और जब वो वहां गोकुल में जन्म लेगा तो सारे वहां के निवासियों को ब्रजवासियों को बहुत आनंद प्रदान करेगा और इसलिए उसका नाम होगा राम, जो रमण करेंगे और सबको आनंद दिलाएंगे। और तीसरी बात, ये बहुत बलवान होंगे इसलिए उनका नाम होगा बलभद्र। और तुम जाके मेरी सेवा करोगे और इस सेवा की वजह से तुम्हारी ख्याति भी सारे विश्व में फैलेगी, तुम बहुत प्रसिद्ध हो जाओगे, बहुत सारे लोग तुम्हारी उपासना करेंगे और लोग तुम्हें अलग अलग नामों से पुकारेंगे, नारायणी, ईशानी, शारदा, वैष्णवी, कुमुदा इत्यादि, ये सब दुर्गा देवी के नाम हैं। महामाया कौन है? ये तो स्वयं दुर्गा देवी ही है। और फिर हे देवी जरा ध्यान से सुनो, जब तुम इस तरह से बलराम जी को रोहिणी देवी के गर्भ में स्थानांतरित करोगे उसके बाद मैं स्वयं माता देवकी के गर्भ में प्रकट हो जाऊंगा और उधर तुम जाकर गोकुल में यशोदा देवी के गर्भ में अपने आप को प्रकट करा लेना और यशोदा देवी के गर्भ से जन्म लेना, तो तुम मेरी बहन बनोगी भौतिक जगत में और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो ओम कह के प्रणाम करके योग माया देवी वहां से चली गई, सीधे चली आई मथुरा जहां कंस के कारागृह में माता देवकी थी। तो योग माया के प्रभाव से बच्चे का स्थानांतरण किया, उनको आकर्षित करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थित कर दिया। उधर माता देवकी के ये सातवें बच्चे थे, सातवां गर्भ था, तो सबको ऐसे लगा, यहां तक कि माता देवकी को भी लगा कि गर्भपात हो गया है और सभी लोग शोक करने लग गए कि हाय हाय क्या हुआ, बच्चे की मृत्यु हो गई पेट के अंदर ही। और कंस भी उसमें शोक में शामिल हो गए, झूठा नकली शोक, अरे रे रे मेरी बहन क्या हो गया, क्या हो गया, बच्चे की हत्या हो गई, देखो कितना दुष्ट व्यक्ति था, पहले तो 6 बच्चों की हत्या तो कर दी, अब 7वें बच्चे के गर्भपात के समय से झूठा झूठा शोक दिखा रहा था। तो उधर रोहिणी देवी के गर्भ में एक बच्चा था, 7 महीने रोहिणी देवी गर्भवती थी, पहले वो मथुरा में थी, फिर कंस के डर से वो चली गई गोकुल में, जब वो गोकुल में चली गई तो वो गर्भवती थी, उस समय 7 महीने गर्भवती थी। और जब योग माया ने बलराम जी को उनके गर्भ में स्थित करना चाहा तो देखा कि यहां कोई गर्भ पहले से है, तो उन्होंने उस गर्भ का पात पतन करा दिया। और फिर रोहिणी देवी अपने निद्रा में सोच रही थी, उनको ऐसे लगा कि सपने में शायद मेरा गर्भपात हो गया है, तो फिर बहुत विचलित होकर अपने नींद से उठी, बहुत बेचैन हो गए कि अरे रे क्या हो गया, मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई, उस समय योग माया देवी ने उनको स्वप्न में ही आश्वासन दिलाया, सांत्वना दी कि नहीं नहीं हे देवी, कोई चिंता नहीं करना, अब मैं योग माया हूं, मैंने ही तुम्हारे गर्भ से ये बच्चे को निकाला है और तुम्हारे गर्भ में अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी अब तुम्हारे गर्भ में मैं स्थित करा रही हूं। तो तब रोहिणी देवी का मन शांत हो गया, वो फिर से सो गई। जब जागे तो उनको पता नहीं चला कि स्वप्न में क्या देखा था, क्या हुआ था, योग माया का प्रभाव उनके ऊपर भी हो गया। और फिर और 7 महीने बीत गए। इस तरह से रोहिणी देवी का गर्भ का समय जो है 14 महीने चला। फिर बलराम जी का जन्म वहां हो गया और यहां मथुरा में सही समय पर श्री कृष्ण प्रकट हुए। माता देवकी के गर्भ में पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए। वसुदेव ऐसे चमक रहे थे मानो कि वो कोटि कोटि सूर्य जैसे प्रकाशमान है। और फिर वसुदेव के हृदय से भगवान कृष्ण ने अपने आप को स्थानांतरित किया देवकी के हृदय में, उनके गर्भ में। और फिर जब देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण आए तो देवकी का चेहरा इतना तेजस्वी हो गया था और देवकी देवी इतनी सुंदर लग रही थी कि कंस भी संशय करने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, अब अवश्य ये 8वां पुत्र जो है, जो मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, ये अभी अवश्य मेरे बहन के गर्भ में है, ऐसा संशय कंस को हुआ। परंतु उधर आगे चल के बलराम जी का जन्म हो ही गया, परंतु सब चुपचाप अवस्था में, क्योंकि नंद महाराज को डर था कि यदि कंस को पता चले तो फिर वो आएगा यहां बच्चों की हत्या करेगा। ये तो बात सब जगह फैल गई थी ना कि कंस ने देवकी के पहले 6 बच्चों के साथ में क्या किया था। तो इसलिए अब नंद महाराज बहुत घबराए हुए थे, ज्यादा खबर इधर उधर फैलाई नहीं। तो रोहिणी देवी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ। उधर थोड़े समय बाद भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ। और फिर आप सब वो कथा जानते ही हैं कि श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव से कहा कि मुझे यहां से ले जाकर आप गोकुल में नंद बाबा के घर में छोड़ दो। तो वसुदेव के जंजीर जो हैं वो अपने आप खुल गए, बड़ा चमत्कार हुआ। कारागृह के जो दरवाजे हैं वो भी अपने आप खुल गए। जो पहरेदार वहां पर बैठे हुए थे, चौकीदार, उनको भी गहरी नींद आ गई योग माया के प्रभाव से। और वसुदेव बाल कृष्ण को लेकर यमुना पार करके गोकुल आ पहुंचे और उन्होंने जाके वहां बच्चे को रखा और देखा कि यहां एक बच्ची है, माता यशोदा ने जन्म दिया है। वो तो योग माया थी, उसको लेकर वो चले आए और कृष्ण को रख के चले आए वहां पर। तो कृष्ण का भी वहां पर जन्म हो गया। जन्माष्टमी के दिवस पर इस संबंध में भी एक रहस्यमय बात है जो हम सुनाएंगे, लेकिन आज नहीं। खैर, आज के लिए कहना इतना पर्याप्त है कि दोनों कृष्ण और बलराम, इनका जन्म हो गया और वो गोकुल में आए। अब श्री कृष्ण ने अपने लीलाएं करना शुरू कर दिया, पूतना का वध कर दिया, जबकि उनकी आयु 5-6 दिन की थी केवल। आगे चल के फिर 1 महीने की आयु भी नहीं हुई होगी कि शकटासुर का वध कर दिया। आगे चल के और थोड़ा समय बीतने के बाद उन्होंने फिर तृणावर्त का वध कर दिया। ऐसे 3 बड़े-बड़े असुरों का वध पहले वर्ष में ही अपने आयु के भगवान ने कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे साबित कर दिया कि चाहे वो बाल रूप में हो, पौगंड रूप में हो, किशोर अवस्था में हो, या उनके शादी होकर उनके बच्चे और पौत्र, पुत्र और पौत्र भी हो गए हों, वो हर अवस्था में भगवान ही रहते हैं और उनकी शक्ति का क्षय कभी नहीं होता है, वो सर्वशक्तिमान हर समय रहते हैं। तो खैर, जब पूतना शकटासुर तृणावर्त का वध हो गया था, तो एक बार यदुवंशियों के जो कुल गुरु हैं गर्ग मुनि, वो आए व्रज में, नंद बाबा के घर में आए। उनको पता चला था कि इनके दो बच्चे हुए हैं, तो वो जब आए तो नंद बाबा ने उनसे कहा कि आप इनको कृपा करके आशीर्वाद दीजिए। और गर्ग मुनि ने कहा ठीक है, नामकरण संस्कार तो करने चाहिए, नंद बाबा की बहुत इच्छा थी। परंतु नंद बाबा के मन में डर था कि यदि खुले आम नामकरण संस्कार किया जाए, एक बड़ा अनुष्ठान यदि किया जाए, तो सबको पता चलेगा, सबको बुलाना पड़ेगा और सब जगह खबर फैल जाएगी, मथुरा में कंस के कानों तक खबर पहुंच जाएगी। तो कंस को पता चलेगा कि ये देवकी के पुत्र हैं, ये दो बच्चे हैं, इनकी हत्या करनी होगी। तो नंद बाबा ने कहा मुझे संस्कार तो करने ही करने हैं, परंतु खुलेआम नहीं करना है, तो कृपया आप यहां एक गुप्त रीति से नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो यहां मेरे गौशाला में कोई नहीं है, तो एकांत स्थान है यहां पर, तो मेरे ये दो बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्ग मुनि ने स्वीकार कर दिया। तो कृष्ण का नाम तो रखा ही, कृष्ण नाम रखा, और फिर बलराम जी के बारे में भी उन्होंने ऐसे नाम रखे, कहा कि इस लड़के का नाम संकर्षण होगा, क्योंकि इस बच्चे ने आपके परिवार को और वसुदेव के परिवार को एक किया है, जोड़ दिया है। ये कैसे? इसके पीछे एक छोटा सा इतिहास है। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था देवमीढ़। तो उनकी एक क्षत्रिय पत्नी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था शूरसेन। उस जमाने में तो क्षत्रियों के कई पत्नियां रानियां हुआ करती थी। तो और एक पत्नी थी, रानी थी, जो वैश्य थी। तो उस वैश्य रानी से या पत्नी से उनको जो बच्चा हुआ, उसका नाम था, लड़का हुआ, उसका नाम था पर्जन्य। तो पर्जन्य ने अपनी वैश्य वृत्ति स्वीकार कर ली। तो वो पहले ब्रजभूमि चले आए, ब्रजभूमि में आके फिर गायों का देखभाल करना शुरू कर दिया, गोपालन। पर्जन्य के कई पुत्र हुए, 5 पुत्र हुए, उनमें बीच वाले पुत्र थे नंद महाराज। उधर शूरसेन के भी कई पुत्र हुए, उनमें से सबसे जो योग्य पुत्र थे वसुदेव, और वसुदेव के फिर ये पुत्र हुए कृष्ण। अब बलराम जी देखिए, पहले तो देवकी के पुत्र में थे, अब गर्भ में थे, और भगवान श्री कृष्ण भी देवकी के गर्भ में थे। अब माता रोहिणी के गर्भ में बलराम जी आए पहले देवकी के गर्भ से। इस तरह से दोनों परिवार अब जुड़ गए। तो गर्ग मुनि ने कहा इसलिए इनका नाम अब होगा संकर्षण, और इनका नाम राम भी होगा और बलराम भी होगा, बल भी होगा, बलराम भी होगा, बलदेव, क्योंकि बहुत बलवान होगा और गोकुल के निवासियों को बड़ा आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इसका भी नाम राम होगा। तो ऐसे नामकरण संस्कार हुआ, और बलराम जी बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही कृष्ण के साथ में वृंदावन में बहुत मधुर लीलाएं में शामिल रहते थे। बलराम जी की खूबी ये है कि क्योंकि वो कृष्ण की सेवा करने के लिए ही प्रकट हुए हैं, श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया है बलराम के रूप में केवल सेवा हेतु, इसलिए बलराम जी इस तरह सेवा करते हैं श्री कृष्ण के कि कोई और नहीं कर सकता। क्यों? आप तो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा 5 रसों में की जाती है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो बलराम जी इन पांचों रसों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। शांत रस में कैसे करते हैं? बलराम जी अपने आप को विस्तार करके संपूर्ण व्रज धाम, गोलोक वृंदावन धाम है, उसका निर्माण करते हैं। तो ये व्रज भूमि, व्रज मंडल है, गोलोक वृंदावन है, ये क्या है? ये तो बलराम जी का ही एक विस्तार है। तो वृंदावन धाम ये साक्षात बलराम जी हैं। बलराम जी ने अपने आप को वृंदावन धाम के रूप में विस्तार करके शांत रस में वो भगवान की सेवा करते हैं। और इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण के जितने भी निजी सामग्री हैं, उनके वस्त्र हैं, उनके आभूषण हैं, उनकी शैया है और उनके बांसुरी या अन्य बहुत सी चीजें हैं, वो सब बलराम जी के विस्तार हैं। तो बलराम जी ऐसे शांत रस में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। और बलराम जी बड़े भाई होने के बाद भी श्री कृष्ण की दासी रूप में भी सेवा करते हैं, क्योंकि गोलोक वृंदावन में यही एक सिद्धांत है सेवा का। सभी वहां श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। जैसे हम प्रवचन के पहले में ही कह रहे थे कि वहां जो पारिवारिक जीवन है उसका केंद्र बिंदु है कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रेम। सभी लोग कृष्ण की सेवा ही करते हैं। तो बलराम जी भी ऐसे सेवा करते हैं। कृष्ण जब थक जाते हैं तो कृष्ण के चरणों को मालिश करते हैं, बहुत सी सेवा करते हैं कृष्ण के लिए। दास्य रस में सेवा करते हैं और सख्य रस में बराबरी के स्तर पर खेल क्रीड़ा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, गायों को चराते हैं, कभी उनके साथ कुश्ती भी करते हैं। कभी खेल में कभी कृष्ण हार जाते हैं तो कभी बलराम हार जाते हैं। इस तरह से सख्य रस में समानता के स्तर में बहुत लीला करते हैं बलराम जी। और कभी कभी बलराम जी, क्योंकि वो बड़े हैं उम्र में, तो बड़ा भाई जो होता है वो पिता तुल्य होता है, तो कभी कभी वो श्री कृष्ण को आदेश भी देते थे। जो बड़े होते हैं घर में, उनके हृदय में छोटों के प्रति एक सुरक्षा की भावना जैसे होती है कि ये मेरे छोटे भाई बहन हैं या मेरे बच्चे हैं, इनकी भलाई होनी चाहिए, इनकी रक्षा होनी चाहिए, तो ऐसी एक भावना रहती है, ये स्वाभाविक है। तो बलराम जी के हृदय में भी श्री कृष्ण के प्रति ऐसे भावना है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक बार बलराम जी ने सुबल सखा को बुलाया। सुबल जो उनके मित्र हैं कृष्ण के, बलराम के सखा हैं उनके, ग्वाल बाल, तो उनको बुलाकर कहने लगे कि अरे सुबल, देखो आज कृष्ण गोचारण के लिए नहीं जाए, ये देखना आज कृष्ण का जन्मदिन है और आज हम बहुत कुछ करने वाले हैं कृष्ण के लिए, उनका जन्मदिन मनाने वाले हैं, तो जाओ कृष्ण से कहो कि आज वो वन में नहीं जाए। तो ऐसा आदेश देते थे वो। आदेश कौन दे सकते हैं? जो बड़े हैं वही देते हैं आदेश। तो बलराम जी कभी कभी श्री कृष्ण को ऐसे आदेश दिया करते थे, इसलिए वात्सल्य भाव भी उनका है। और कभी कभी श्री कृष्ण भी बलराम जी की ऐसी सेवा किया करते थे ताकि वात्सल्य रस का आदान प्रदान हो। और साथ साथ में जो माधुर्य रस है, इसमें कैसे भले बलराम जी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो पुरुष देह में है, वो अपने आप को अनंग मंजरी एक गोपी है, गोपियों की जो सहेली है, कम उम्र की है, जो उनकी सेवा करती है, वो है श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन। तो अपने आप को वो अनंग मंजरी के रूप में विस्तार करते हैं और फिर वो कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो बलराम जी पांचों रसों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो बलराम जी का जो भाव है वो इतना मीठा है, इतना मधुर है, तो हमें इस भाव को स्वीकार करना चाहिए। बलराम जी गुरु तत्व हैं, वही शक्ति प्रदान करते हैं इस भौतिक जगत में जीवों को, एक आध्यात्मिक शक्ति जिसके कारण वो जीव आगे चल के दूसरों को कृष्ण भक्ति के पथ में मार्गदर्शन कर सकते हैं। जो मार्गदर्शन करते हैं, जो भगवान के धाम में जाने के लिए बद्ध जीवों को प्रेरणा देते हैं, ज्ञान देते हैं, कृपा करते हैं उनके ऊपर, वो गुरु कहलाते हैं। तो गुरु तो मूल गुरु तो बलराम जी है, और बलराम जी जब ऐसे शक्ति प्रदान करते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर तो उसको गुरु कहा जाता है उस व्यक्ति को। तो जिस तरह से गुरु के बिना कृष्ण नहीं पाए जाते, उसी तरह से बलराम जी के बिना, उनके कृपा के बिना हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए बलराम जी की कृपा की आवश्यकता हमारे लिए बहुत है। बलराम जी की सेवा करने से और गुरु परंपरा की सेवा करने से वो एक जैसे है। गुरु परंपरा की सेवा बलराम की सेवा है। तो बलराम जी पहले देवकी माता के गर्भ में प्रकट हुए, उसके बाद में श्री कृष्ण आए। क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है कि बलराम जी सीधे रोहिणी माता के गर्भ में क्यों नहीं गए, माता देवकी के गर्भ से आके फिर रोहिणी के गर्भ में जाने की आवश्यकता क्या थी। इसके पीछे एक गुह्य कारण ये है कि माता देवकी के गर्भ को तैयार कर रहे थे श्री कृष्ण के आगमन के लिए। माता देवकी तो वैसे भी शुद्ध भक्त हैं और उनके लिए और शुद्धिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण अब माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करने वाले थे, तो उसके पहले बलराम जी ने आके तैयारी कर दी, सारा वातावरण उपयुक्त कर दिया, बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया, और फिर वहां से वो निकल गए और श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ फिर। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी गुरु के आदेश के अनुसार जो शुद्धिकरण होता है, आदेश का पालन करने के अनुसार जो शुद्धिकरण होता है, उससे हमारा हृदय तैयार हो जाता है श्री कृष्ण को स्वीकार करने के लिए। जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक कृष्ण हमारे हृदय में कैसे आएंगे। हम भी किसी गंदे स्थान में बैठना पसंद नहीं करते हैं ना। किसी कमरे में यदि बहुत गंदगी हो तो हम सोचते हैं, अरे छी, कितना गंदा स्थान है, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। हम एक अच्छे साफ सुथरे घर में या कमरे में रहना चाहते हैं। तो फिर भगवान कृष्ण भी ऐसा चाहते हैं। यदि हम उनको हमारे हृदय में आके निवास करने के लिए निमंत्रण देना चाहते हैं तो हृदय शुद्ध होना चाहिए ना। अशुद्ध हृदय में तो कृष्ण भगवान नहीं आएंगे। तो हृदय शुद्ध करने का तरीका है भगवान बलराम जी की कृपा प्राप्त करना, गुरुजनों का आदेश प्राप्त करके। और आज इस दिवस पर हम बलराम जी के चरण कमलों में प्रार्थना कर सकते हैं कि हे बलराम जी, आप कृपया हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे कि हम इस भक्ति के साधन भजन को अच्छी तरह से सुदृढ़ रूप से कर सकें, निष्ठावान और श्रद्धावान होकर, ताकि हमारे हृदय में जितने भी गलत चीजें हैं, अनर्थ हैं, वो सब साफ हो जाएं और हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, ताकि श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो जाएं। मेरे मन मंदिर में एक बार आओ, आ जाओ गिरिधारी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन गिरिधारी के हृदय में आने के पहले बलराम जी को अपना काम करना है, इसलिए बलराम जी की कृपा हमें सबसे पहले प्राप्त करनी है। जैसे आज सुबह हम बता रहे थे कि कि प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन के संबंध में कि हमारे यहाँ कृष्ण बलराम की मूर्तियां हैं, तो हमें श्री कृष्ण से आध्यात्मिक बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और बलराम जी से आध्यात्मिक बल के लिए, और फिर श्रीमती राधा रानी से किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, भक्ति के लिए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए अच्छी व्यवस्था बना दी है। आज उनका जन्मदिन है बलराम जी का, तो जन्मदिन के ऊपर तो सभी लोग बहुत ज्यादा उदार हृदय के होते हैं, तो बलराम जी आज हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। तो आज हमें कुछ गलत चीज नहीं मांगनी है बलराम जी से, हमें ये मांगना है कि कृपया बलराम जी हमारे हृदय को आप साफ कर दीजिए, हमें श्रद्धावान निष्ठावान भक्त बनाइए ताकि हम शुद्ध कृष्ण भक्त बन सकें। जिस तरह से आप कृष्ण की सेवा करते हैं उसी तरह से हम भी सेवा कर सकें। श्री बलराम जी की जय। श्री बलराम जयंती महोत्सव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गौर प्रणाम। हरे कृष्णा। अभी झूलन यात्रा का अंतिम दिन है, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, और पिछले कई दिनों से एकादशी से हर शाम को यहाँ राधा कृष्ण झूले में सवार होते हैं, झूले में विराजमान रहते हैं, और उनको झूले से झुलाया जाता है, भक्त लोग आके झुलाते हैं भगवान को, और साथ साथ सुंदर भजन कीर्तन।